एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
ज्ञान गोष्ठी में सभी सुनने वालों का स्वागत। मैं हूँ आपकी पहली मेजबान
और मैं हूँ आपका दूसरा मेजबान। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं प्रभावशाली विचार पर गहराई से बात करने वाले हैं, साम्यवाद यानी कम्युनिज्म।
बिल्कुल, एक ऐसा विचार जिसने सच में 20वीं सदी की पूरी शक्ल ही बदल दी।
हाँ, और इस पर बात करने के लिए हमारे पास लेस्ली होम्स की दो बहुत अहम किताबें हैं। एक है कम्युनिज्म और दूसरी थोड़ी छोटी, कम्युनिज्म अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
और ये विषय सिर्फ इतिहास की बात नहीं है ना, मतलब आज भी ये बहुत प्रासंगिक लगता है।
कतई नहीं, सोवियत संघ तो ठीक है बिखर गया, लेकिन जो साम्यवाद के आइडियाज थे या कहें उसकी परछाई है, वो आज भी दुनिया में मौजूद है।
न्याय की बातें हो रही हैं, वहां भी इसके तार जुड़ते हैं।
सही बात है। तो आज हम कोशिश करेंगे होम्स के नजरिए से ये समझने की कि भाई ये विचारधारा आखिर थी क्या, इसका मकसद क्या था, क्या लक्ष्य था, और जब ये जमीन पर आई तो इसकी असल भूमिका क्या रही।
हाँ, और ये फेल क्यों हुई, और सबसे जरूरी इसकी विरासत, मतलब आज हमारे लिए इसके क्या मायने हैं।
तो इस सफर में हमारे गाइड हैं लेस्ली होम्स। जरा इनके बारे में भी जान ले, क्योंकि ये सिर्फ कोई एकेडमिक नहीं है।
बिल्कुल, मेलबर्न विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एमेरिटस हैं, LAC से PhD, ये सब तो हैं ही।
हाँ, लेकिन जो चीज इन्हें खास बनाती है वो है इनका फील्ड एक्सपीरियंस, मतलब जमीनी अनुभव।
सही, इन्हें दुनिया के उन गिने चुने एक्सपर्ट्स में माना जाता है जो कम्युनिस्ट और पोस्ट कम्युनिस्ट यानी साम्यवाद के बाद वाली व्यवस्थाओं को समझते हैं।
और इन्होंने सिर्फ दूर से स्टडी नहीं की, रूस, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, इन जगहों पर काफी वक्त बिताया है, वहां रहकर रिसर्च की है।
हाँ, और सिर्फ कागज नहीं पलटे, उन लोगों से मिले हैं, बात की है जिन्होंने वो दौर जिया है, पुराने अफसर हों, आम नागरिक हों, या वो पीढ़ी जिसने बदलाव देखा।
तो उनका जो नजरिया है वो सिर्फ थ्योरी नहीं है, उसमें एक मानवीय पहलू भी है। ये चीज उनके विश्लेषण को मुझे लगता है एक अलग ही गहराई देती है, खासकर जब हम वो बात करते हैं ना सिद्धांत और व्यवहार के फर्क की।
बिल्कुल सही।
तो इन किताबों का मकसद क्या है होम्स, क्या करना चाह रहे हैं?
देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो होम्स साम्यवाद से जुड़े जो मिथक हैं, जो भ्रम हैं, उन्हें हटाना चाहते हैं।
अच्छा।
चाहे वो मतलब कुछ लोग जो उसे बहुत आदर्शवादी मानते हैं वो हों, या फिर जो बिना सोचे समझे उसकी बुराई करते हैं वो हों, वो एक साफ संतुलित तस्वीर पेश करना चाहते हैं।
तो एक तरह से सफाई कर रहे हैं।
हाँ, वो कह सकते हैं। वो हमें एक सफर पे ले जाते हैं, कहाँ से ये विचार शुरू हुआ, फिर मार्क्स एंगल्स ने उसे कैसे बदला, जिसे वो वैज्ञानिक समाजवाद कहते थे, और फिर लेनिन ने उसमें क्या क्रांतिकारी मोड़ लाए,
और फिर ये विचार कैसे राजनीति में बदले, कैसे सत्ता तक पहुंचे, रूस की क्रांति से लेकर पूर्वी यूरोप, एशिया तक कैसे ये फैला।
हाँ, लेकिन एक बहुत जरूरी बात जो होम्स साफ करते हैं और मेरे ख्याल से ये समझना बहुत जरूरी है, वो है छोटे सी वाले कम्युनिज्म और बड़े सी वाले कम्युनिज्म के बीच का फर्क।
अच्छा, ये क्या है, छोटा सी और बड़ा सी?
छोटा सी वाला कम्युनिज्म वो एक आदर्श है, एक थियरी, मतलब एक ऐसा समाज जहां कोई राज्य नहीं, कोई वर्ग नहीं, एक काल्पनिक लक्ष्य।
ओके, यूटोपिया जैसा।
हाँ बिल्कुल। और बड़ा सी वाला कम्युनिज्म वो बात करता है 20वीं सदी के उन असली राजनीतिक व्यवस्थाओं की जो दुनिया में थी, सोवियत संघ, चीन, पूर्वी जर्मनी, ये सब।
अच्छा, तो एक है सपना और एक है हकीकत।
बिल्कुल, और यहीं पर वो लक्ष्य और असल भूमिका का फर्क साफ दिखने लगता है। सपना कुछ और था, पर जमीन पर जो सिस्टम बने उनकी भूमिका कुछ और ही निकली।
और होम्स फिर इन असल सिस्टम्स का पूरा विश्लेषण करते हैं, सोवियत मॉडल कैसा था, युगोस्लाविया ने क्या अलग किया, चीन का प्रयोग क्या है।
हाँ, और वो किसी भी सिस्टम के अंधेरे पक्ष से कतराते नहीं है, राजनैतिक दमन हो, आर्थिक नाकामी हो, आम लोगों की मुश्किलें हों, सब पर खुल के बात करते हैं। तो उनका जो मुख्य तर्क बनता है वो यही है कि साम्यवाद का लक्ष्य, उसका वादा, भले ही बराबरी और आजादी का था,
हाँ,
लेकिन व्यवहार में उसकी भूमिका हमेशा तानाशाही और आर्थिक पिछड़ेपन वाली ही बन गई।
और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि नेता बुरे थे।
वो कहते हैं कि ये खाई सिर्फ बुरे नेताओं या खराब इम्प्लीमेंटेशन का नतीजा नहीं थी, बल्कि सिद्धांत में ही कुछ बुनियादी खामियां थी, और उसे इतने बड़े जटिल समाजों पर लागू करने की चुनौतियां ही ऐसी थीं कि नतीजा यही निकलना था। मतलब सपना शायद जमीन पर उतरने लायक था ही नहीं।
चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। होम्स शुरुआत करते हैं मार्क्स से, लेकिन ये भी बताते हैं कि भाई बराबरी और मिलके रहने का विचार कोई नया नहीं था, प्लेटो के टाइम से, थॉमस मोर की यूटोपिया से ये आइडियाज रहे हैं।
हाँ, पर मार्क्स और एंगल्स ने इसे एक कहे तो वैज्ञानिक आधार देने की कोशिश की, उनका वो ऐतिहासिक भौतिकवाद
कि इतिहास को अर्थव्यवस्था चलाती है, उत्पादन के तरीके चलाते हैं, न कि महान लोग या विचार।
बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत रेडिकल सोच थी उस समय। और फिर वर्ग संघर्ष का आइडिया कि इतिहास है ही मालिक और मजदूर के बीच की लड़ाई,
और पूंजीवाद में मजदूर का अलगाव, मतलब अपने काम से कटना, अपनी बनाई चीज से कटना, खुद से कटना, और पूंजीपति का वो अतिरिक्त मूल्य या सरप्लस वैल्यू ले लेना, ये सब मार्क्स के विश्लेषण का केंद्र थे।
हाँ, तो मार्क्स का अंतिम लक्ष्य क्या था? वो मानते थे कि पूंजीवाद खुद ही दह जाएगा, मजदूर क्रांति करेंगे। फिर एक दौर आएगा सर्वहारा की तानाशाही का, मतलब मजदूर वर्ग का राज होगा, जिसे वो समाजवाद कहते थे। और फिर धीरे धीरे राज्य खुद ही खत्म हो जाएगा।
राज्य खत्म हो जाएगा,
हाँ, और तब बनेगा वो असली वाला साम्यवादी समाज, जहां न कोई वर्ग होगा न कोई राज्य, और सिद्धांत होगा हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार काम करे और हर किसी को उसकी जरूरत के अनुसार मिले। ये था वो बड़ा सपना, वो आदर्श लक्ष्य।
सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है।
हाँ, सुनने में तो लगता है, लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है लेनिन का।
होम्स इस पर बहुत जोर देते हैं।
अच्छा, लेनिन ने क्या किया? लेनिन ने मार्क्सवाद को पकड़ा और उसे एक पिछड़े कृषि प्रधान रूस के लिए फिट कर दिया। जबकि मार्क्स के हिसाब से क्रांति तो विकसित पूंजीवादी देशों में होनी थी।
हाँ, ये तो विरोधाभास लगता है।
यहीं पर लेनिन ने वो किया जिसे होम्स कहते हैं कि उसने लक्ष्य को थोड़ा पीछे कर भूमिका पर फोकस सादा कर दिया। मतलब सत्ता कैसे हासिल की जाए इस पर।
कैसे?
उनका सबसे बड़ा और पहला बदलाव था हरावल पार्टी का विचार। लेनिन ने कहा कि मजदूर वर्ग खुद ब खुद क्रांतिकारी नहीं बन सकता। उसे रास्ता दिखाने के लिए पेशेवर क्रांतिकारियों की एक छोटी टाइट डिसिप्लिन्ड पार्टी चाहिए।
अच्छा,
और यहीं पर खेल बदल गया। इतिहास को चलाने वाला अब वर्ग नहीं रहा, वो पार्टी बन गई। अब पार्टी की भूमिका हो गई सत्ता पर कब्जा करना और उसे बनाए रखना, चाहे वो मूल लक्ष्य से थोड़ा भटके ही क्यों ना।
बापरे, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है।
बिल्कुल। दूसरा बड़ा आइडिया था साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण। सवाल था कि भाई पश्चिमी क्रांति क्यों नहीं हुई? लेनिन ने कहा क्योंकि उन्होंने अपने उपनिवेशों को लूटा और उस लूट से अपने मजदूरों को खुश रखा, उन्हें रिश्वत दी। इसलिए क्रांति अब केंद्र में नहीं होगी बल्कि रूस जैसी कमजोर कड़ी में होगी। इसने एक पिछड़े देश में क्रांति को जायज ठहरा दिया।
और तीसरा?
तीसरा था जनवादी केंद्रीयता, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। ये पार्टी का अंदरूनी सिस्टम था। कहने को तो लक्ष्य था बहस की आजादी, पर जब फैसला हो जाए तो सब एक साथ।
सुनने में तो ठीक लगता है।
हाँ, पर असल में इसकी भूमिका बनी कि केंद्रीय नेतृत्व जो कहे वही माना जाए, ऊपर से नीचे तक कठोर कंट्रोल। तो लेनिनवाद ने मार्क्स के विचारों को सत्ता हासिल करने और उसे किसी भी कीमत पर बनाए रखने के एक ज्यादा प्रैक्टिकल, ज्यादा क्रूर और ज्यादा सत्तावादी खाके में बदल दिया। अब पार्टी का कंट्रोल ही असल मकसद बन गया था।
तो फिर जमीन पर जब ये सिस्टम बने तो आम लोगों की जिंदगी कैसी थी? होम्स क्या बताते हैं? वो जो लक्ष्य था बराबरी का, आजादी का, उसका क्या हुआ?
वही लक्ष्य और हकीकत के बीच की खाई बहुत बहुत चौड़ी थी। राजनीतिक तौर पर देखें तो एक दलीय राज्य, मतलब सिर्फ एक पार्टी का राज। पार्टी और सरकार में कोई फर्क नहीं, पार्टी का हर चीज पर कंट्रोल, सेना, अदालत, मीडिया, स्कूल कॉलेज, अर्थव्यवस्था, सब कुछ।
और इसी कंट्रोल से वो चीज पैदा हुई जिसका जिक्र होम्स करते हैं, नोमेनक्लेटूरा।
हाँ बिल्कुल, ये पार्टी के ऊंचे पदों पर बैठे लोगों का एक खास वर्ग बन गया। सारी सुविधाएं, सारे विशेषाधिकार इनके पास थे, तो वो जो वर्गहीन समाज का लक्ष्य था
वो तो यहीं खत्म हो गया।
हाँ, सिस्टम की भूमिका एक नए तरह का ऊंच नीच वाला समाज बनाने की हो गई।
और इस कंट्रोल को बनाए रखने के लिए जाहिर है दमन होता होगा,
भयंकर दमन, खुफिया पुलिस का जाल, रूस में चेका, फिर केजीबी, पूर्वी जर्मनी में स्टासी। इनका काम ही था असंतोष को कुचलना, डर, निगरानी, शक का माहौल।
स्टालिन के पर्ज, लाखों लोगों को मरवा देना, माओ की सांस्कृतिक क्रांति, ये सब इसी का हिस्सा थे।
बिल्कुल, राज्य का घोषित लक्ष्य तो जनता की सेवा था, पर उसकी असल भूमिका जनता पर नजर रखना और उन्हें दबाना बन गई थी।
और अर्थव्यवस्था, उसका क्या हुआ?
अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह राज्य के कंट्रोल में, कमांड इकोनॉमी या केंद्रीय योजना। लक्ष्य था कि सब कुछ प्लान करके करेंगे, बराबरी लाएंगे। लेकिन बाजार को खत्म करके पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए यह तय करना कि क्या बनेगा, कितना बनेगा, किस कीमत पर बिकेगा, इस सिस्टम की भूमिका ने अर्थव्यवस्था को बेहद अक्षम, इनएफिशिएंट बना दिया।
चीजों की कमी रहती थी, सुना है,
भारी कमी, खासकर आम जरूरत की चीजों की। जोर भारी उद्योगों पर, हथियारों पर ज्यादा था, और खेती का सामूहिकीकरण वो तो एक आपदाई साबित हुआ।
वो क्या था?
किसानों से जबरदस्ती जमीनें छीनकर बड़े बड़े सरकारी फार्म बना दिए गए। लक्ष्य था कि इससे उत्पादन बढ़ेगा,
और हुआ उल्टा।
बिल्कुल उल्टा, उत्पादन गिरा, किसानों ने विरोध किया, और यूक्रेन के होलोडोमोर जैसे भयानक अकाल पड़े जिसमें लाखों लोग मारे गए।
हे भगवान।
सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी यही कंट्रोल। प्रोपेगेंडा जबरदस्त, सेंसरशिप कड़ी, स्कूलों में एक ही विचारधारा पढ़ाई जाती थी, धर्म को दबाया जाता था। लक्ष्य था एक नया सोवियत मानव बनाना जो पार्टी के प्रति वफादार हो।
लेकिन असलियत में क्या लोग वैसे बन गए?
नहीं, असलियत में दोगलापन बहुत था। लोग बाहर से कुछ और दिखाते थे, अंदर से कुछ और सोचते थे। काला बाजारी चलती थी, सिस्टम पर भरोसा नहीं था। राज्य की भूमिका लोगों की सोच बदलने की थी, पर वो उसमें बुरी तरह नाकाम रहा।
और फिर अचानक से 1989 से 91 के बीच ये सब ढह गया, इतनी तेजी से, ये कैसे हुआ?
हाँ, ये बहुत नाटकीय था। होम्स इसके कई कारण बताते हैं। सबसे बड़ा कारण तो आर्थिक विफलता ही थी।
अच्छा।
ये कमांड इकोनॉमी नए जमाने, खासकर सूचना क्रांति का मुकाबला कर ही नहीं पाई। बहुत पिछड़ी थी, अक्षम थी, लोगों की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही थी। ऊपर से हथियारों की होड़ का बोझ, लिविंग स्टैंडर्ड गिर रहे थे। मतलब सिस्टम अपने सबसे बुनियादी आर्थिक लक्ष्य में ही फेल हो गया।
और विचारधारा का क्या हुआ? लोगों का भरोसा क्यों उठा?
वही दूसरा बड़ा कारण था, वैचारिक खोखलापन। दशकों से जो वादे किए जा रहे थे वो झूठे साबित हो रहे थे। स्टालिन के जुल्मों का सच बाहर आ रहा था। वो जो नोमन क्लैतुरा का पाखंड था वो साफ दिख रहा था। तो विचारधारा, जिसका लक्ष्य लोगों को प्रेरणा देना था, उसकी भूमिका अब सिर्फ एक बोझ बन गई थी। लोगों का विश्वास खत्म हो चुका था। सिस्टम अब सिर्फ आदत और जबरदस्ती के दम पर चल रहा था।
और फिर गोर्बाचेव आए।
हाँ, मिखाइल गोर्बाचेव, 1985। उनका मकसद सिस्टम को तोड़ना नहीं था, बल्कि उसे बचाना था, उसमें सुधार करना था।
लेकिन हुआ उल्टा।
हाँ, उनकी दो मशहूर नीतियां थी, पेरेस्त्रोइका मतलब आर्थिक पुनर्गठन, और ग्लासनोस्त मतलब खुलापन, पारदर्शिता। अनजाने में ये ताबूत में आखिरी कीलें साबित हुई।
कैसे?
पेरेस्त्रोइका ने पुरानी ठहरी हुई अर्थव्यवस्था में थोड़ी हलचल तो की, पर कोई नई कारगर व्यवस्था बना नहीं पाई। नतीजा हुआ आर्थिक अराजकता।
और ग्लासनोस्त?
जैसे ही थोड़ी बोलने की आजादी मिली, बरसों से दबा हुआ गुस्सा, शिकायतें, अलग अलग देशों की राष्ट्रवादी भावनाएं सब सत्ता पर आ गईं।
अच्छा।
और एक बहुत बड़ी बात हुई, गोर्बाचेव ने ब्रेजनेव सिद्धांत छोड़ दिया। मतलब अब सोवियत संघ पूर्वी यूरोप के देशों में अपनी मर्जी थोपने के लिए सेना नहीं भेजेगा।
और इसका नतीजा?
नतीजा ये हुआ कि 1989 में पूर्वी यूरोप में क्रांति की लहर आ गई। पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, एक के बाद एक साम्यवादी सरकारें गिरने लगीं। बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। और जब बाहर ये सब हो रहा था, तो सोवियत संघ के अंदर भी लोगों को लगा कि ये सिस्टम हमेशा के लिए नहीं है, इसे बदला जा सकता है।
तो होम्स का कहना है कि गोर्बाचेव ने सिस्टम को खत्म नहीं किया,
बल्कि उन्होंने सिर्फ ये जाहिर कर दिया कि वो अंदर से कितना खोखला और सड़ चुका था। सुधार का एक हल्का सा धक्का भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। सिस्टम अपने घोषित लक्ष्यों से इतना दूर जा चुका था, और उसकी असल भूमिका इतनी नाकाम हो चुकी थी कि बस गिरने की देर थी।
तो आज की क्या तस्वीर है? क्या साम्यवाद पूरी तरह खत्म हो गया?
पूरी तरह तो नहीं, पूर्वी यूरोप में लोकतंत्र और बाजार अपनाने का रास्ता काफी मुश्किल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान है चीन।
हाँ, चीन का मॉडल तो बहुत अलग है।
बिल्कुल, डेंग शाओपिंग के जमाने से उन्होंने कमांड इकोनॉमी को छोड़कर एक तरह का राज्य नियंत्रित पूंजीवाद अपना लिया। आर्थिक तरक्की तो जबरदस्त हुई,
लेकिन राजनीतिक कंट्रोल
वो पार्टी ने छोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत कर लिया। थ्यानमिन स्क्वायर का दमन याद ही होगा। तो चीन का घोषित लक्ष्य चाहे जो हो, उसकी असल भूमिका एक तानाशाही वाले पूंजीवादी देश की लगती है।
और ये उस सोच को चुनौती देता है कि आर्थिक उदारीकरण से राजनीतिक उदारीकरण आता ही है।
हाँ, फिर वियतनाम है, जिसने कुछ कुछ चीन जैसा रास्ता अपनाया है। क्यूबा में बदलाव बहुत धीमे हैं, और उत्तर कोरिया, वो तो खैर एक बिल्कुल अलग ही केस है, एक बंद वंशानुगत तानाशाही।
तो मतलब 20वीं सदी का वो बड़ा प्रयोग, वो स्टेट सोशलिज्म वाला, वो तो फेल हो गया। लेकिन
जो सवाल मार्क्स ने उठाए थे, असमानता के, शोषण के, सामाजिक न्याय के, वो सवाल आज भी जिंदा हैं, शायद पहले से ज्यादा जरूरी भी। ये शायद साम्यवाद की स्थायी विरासत है, भले ही उसका दिया जवाब गलत साबित हुआ हो।
बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत से कुछ मोटी मोटी बातें, कुछ की थीम्स निकल कर आते हैं, जिन पर होम्स बार बार जोर देते हैं। पहला और शायद सबसे अहम, सिद्धांत और व्यवहार के बीच की वो गहरी खाई, या जिसे हम कह रहे हैं लक्ष्य, गोल और भूमिका, रोल के बीच का जबरदस्त फासला।
हाँ, ये सबसे बड़ा सबक है शायद। वादा था राज्य मिटाने का, वर्ग मिटाने का, लक्ष्य, और बने क्या? इतिहास के सबसे ताकतवर, सबसे ज्यादा कंट्रोल करने वाले राज्य, जिनमें पार्टी के लोगों का एक नया शासक वर्ग बन गया, भूमिका। ये विरोधाभासी कहानी कहता है।
दूसरा, लेनिन ने जो मोड़ दिया उसका असर, वो हरावल पार्टी और जनवादी केंद्रीयता, इन्होंने सत्ता को कुछ ही लोगों के हाथ में केंद्रित कर दिया। पार्टी की भूमिका बस सत्ता में बने रहना हो गई, लक्ष्य चाहे जो भी रहा हो।
तीसरा, आर्थिक विफलता लगभग तय थी। वो जो केंद्रीय योजना वाला मॉडल था, जिसमें बाजार और कंपटीशन को खत्म कर दिया गया, वो बुनियादी तौर पर ही शायद काम नहीं कर सकता था। लक्ष्य चाहे कितना भी नेक हो, उसकी भूमिका अक्षमता और कमी पैदा करने वाली ही निकली।
चौथा, ये जो तानाशाही सिस्टम थे, ये बाहर से जितने मजबूत दिखते थे, अंदर से उतने ही खोखले थे। वो बदलाव को अपना नहीं सके। जबरदस्ती और डर पर टिकी व्यवस्था की भूमिका आखिर कब तक चल सकती थी?
और पांचवा, विचार मरते नहीं, बस रूप बदल लेते हैं। सोवियत मॉडल भले ही खत्म हो गया, पर साम्यवाद के जो मूल विचार थे, खासकर पूंजीवाद पर सवाल, बराबरी की बात, यानी वो शुरुआती लक्ष्य, वो आज भी जिंदा है। चीन जैसे मॉडलों में या दूसरी बहसों में उनका रूप बदल गया है, पर वो गए नहीं है।
होम्स की किताबों में कुछ ऐसी बातें जो दिमाग में अटक जाती हैं, जैसे वो कहते हैं, वास्तविक रूप से मौजूद समाजवाद का इतिहास मूल रूप से समाजवाद की असंभवता का इतिहास है। मतलब जो हुआ वो यही दिखाता है कि जो सोचा गया था वो हो ही नहीं सकता था, शायद लक्ष्य ही पहुंच से बाहर था।
हाँ, और ये वाला विरोधाभास तो गजब है। साम्यवादी पार्टियों ने राज्य को खत्म करने का वादा किया, जबकि साथ ही मानव इतिहास के सबसे शक्तिशाली राज्यों का निर्माण किया। लक्ष्य था राज्य को गायब करना, और भूमिका बन गई उसे और भीमकाय बनाना।
ये भी बहुत सोचने वाली बात है। साम्यवाद की त्रासदी उसके बुरे इरादों में नहीं, बल्कि उसके अच्छे इरादों की असंभवता में निहित है। मतलब दिक्कत शायद नियत में उतनी नहीं थी जितनी उस सपने में थी, जिसे जमीन पर उतारना नामुमकिन था।
और लेनिन वाला पॉइंट कि कैसे हरावल पार्टी ने पूरा खेल ही बदल दिया। कर्ता अब वर्ग नहीं, पार्टी थी। इसने क्रांति की पूरी भूमिका और दिशा ही बदल दी।
तो ये सब जानने के बाद आज के दौर में ये विश्लेषण हमारे किस काम आ सकता है? आम इंसान इसे कैसे समझे, कैसे इस्तेमाल करे?
मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज जो होम्स का विश्लेषण हमें देता है, वो है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी आलोचनात्मक सोच का एक फ्रेमवर्क। किसी भी राजनीतिक दावे, किसी भी विचारधारा, किसी भी बड़े वादे को परखने का तरीका
कैसे?
हमें हमेशा पूछना चाहिए, ठीक है, घोषित लक्ष्य क्या है? सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन इसकी असल भूमिका, एक्चुअल रोल क्या हो सकती है? क्या ये दोनों बातें मेल खाती हैं? अनपेक्षित नतीजे क्या हो सकते हैं?
हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। जैसे आज कोई भी पार्टी या नेता बड़े बड़े वादे करता है, हम ये बदल देंगे, वो बराबरी ला देंगे, तो हमें सिर्फ लक्ष्य पर नहीं जाना चाहिए।
बिल्कुल नहीं, हमें देखना चाहिए कि तरीका क्या बता रहे हैं। क्या उस तरीके से सत्ता और ज्यादा सेंट्रलाइज्ड हो सकती है? क्या उससे लोगों की आजादी कम हो सकती है? जो संस्थाएं बनेंगी उनकी असल भूमिका क्या होगी?
और आर्थिक मामलों में भी ये लागू होता है। जब भी कोई कहे कि सब कुछ सरकार कंट्रोल करेगी या पूरी तरह केंद्रीय योजना होगी, तो हमें साम्यवाद का अनुभव याद रखना चाहिए। लक्ष्य शायद अच्छा हो, पर क्या वो तरीका काम करता है? कहीं उसकी भूमिका सिर्फ कमी और अक्षमता पैदा करने वाली तो नहीं बन जाती?
सही कहा, और ये हमें दुनिया में कहीं भी जो तानाशाही सिस्टम है उन्हें समझने में भी मदद करता है। कैसे सत्ता एक जगह सिमटती है, कैसे विचारधारा का इस्तेमाल होता है, कैसे असहमति को दबाया जाता है, ये पैटर्न हम पहचान सकते हैं।
और ये चेतावनी भी है ना यूटोपिया वाले विचारों से सावधान रहने की। जब कोई सुनहरे भविष्य के नाम पर आज की आजादियां छीनने की बात करे, तो हमें शक करना चाहिए।
तो कुल मिला के ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये आज के लिए हमारे लिए बहुत सारे सबक समेटे हुए हैं।
मेरे लिए तो सबसे बड़ा सबक यही है कि किसी भी विचार को, किसी भी सिस्टम को सिर्फ उसके वादों से नहीं, बल्कि उसके नतीजों से परखना चाहिए। लक्ष्य चाहे कितना भी महान बताया जाए, असलियत में उसकी भूमिका क्या रही, ये देखना ज्यादा जरूरी है। कठोर विश्लेषण बहुत जरूरी है।
और मेरे लिए ये एहसास कि भले ही 20वीं सदी का वो बड़ा साम्यवादी प्रयोग नाकाम रहा, लेकिन उसने जो सवाल उठाए थे, जो लक्ष्य सामने रखे थे, असमानता मिटाने के, शोषण खत्म करने के, न्याय लाने के, वो सवाल आज भी उतने ही अहम है, शायद पहले से भी ज्यादा। होम्स हमें कोई आसान जवाब नहीं देते हैं, पर वो हमें जटिलताओं को समझने और लक्ष्य और भूमिका के बीच के फर्क को पहचानने का एक नजरिया देते हैं। और ये हमें बेहतर सोचने वाला इंसान बनने में मदद करता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।